हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एक घंटे की ड्राइविंग के बाद पार्थ की गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर जाकर रुक गई, जहां पहले से रश्मि उनका इंतजार कर रही थी। उसे आज सुबह ही पार्थ ने कॉल करके बताया था कि वो उसे उसकी बेटी से मिलवा सकता है। पार्थ ने उसे नहीं बताया था कि वो कौन है और कैसे उसने रूही को अपने पास रखा है, लेकिन रश्मि को जैसे ही उम्मीद मिली थी कि वो अपनी बेटी से मिल सकती है, उसने पार्थ से कोई सवाल जवाब नहीं किया और एक बार में ही उस पर भरोसा भी कर लिया। गाड़ी से उतरते ही रूही लगभग दौड़ते हुए रश्मि के पास गई। रश्मि ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उनमें तुरंत ही पानी भर आया। रश्मि भी तेजी से रूही की तरफ बढ़ी और फिर उसने रूही को जल्दी से अपनी बाहों में भर लिया। वहीं रूही भी रश्मि के करीब आते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने सच में अपनी मम्मी को बहुत मिस किया था। पार्थ कार के पास खड़ा था, हाथ जेब में डाले चुपचाप दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे उसे किसी के रोने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो बार बार बस अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था, क्योंकि उसने रूही से कहा था कि वो उसकी मम्मी से सिर्फ आधे घंटे मिलने देगा, उसके बाद उसे वापस उसके प्राइवेट विला जाना पड़ेगा। रश्मि ने रूही को खुद से अलग किया और फिर उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। रूही भी अब आंखें बंद किए बस रश्मि जो कर रही थी उसे करने दे रही थी। उसे पता था कि उसकी माँ के लिए वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रश्मि का है ही कौन इस दुनिया में, और उसकी इकलौती बेटी ही अगर किडनैप हो गई थी तो उस पर क्या बीती होगी। आधे घंटे बाद पार्थ ने अपना गला साफ करते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, अब चलो यहां से। रश्मि ने जैसे ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने रूही को कसकर अपने सीने से लगाकर आंखें बड़ी बड़ी करके पार्थ की तरफ देखकर लगभग रोते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम उसे नहीं लेकर जा सकते हो। पार्थ ने गुस्से से लाल हो चुकी आंखों को छोटा करते हुए रूही को घूरा। रूही ने जैसे ही उसकी लाल आंखें देखी, वो पल भर में डर गई और उसने डरते हुए रश्मि की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। वो फिलहाल पार्थ की आंखों का सामना नहीं करना चाहती थी और ना ही अपनी मम्मी को छोड़ना चाहती थी। वहीं बढ़ते पैरों के साथ पार्थ का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बटरफ्लाई, चुपचाप इधर आ जाओ और अपनी मामा को भी समझा दो, वरना मैं जो करूंगा उसके बाद तुम्हारी मामा फिर से कभी तुम्हें देखने लायक नहीं रहेगी, और ये मेरी धमकी नहीं है। आई होप तुम्हें पता होगा कि मैं कैसा हूं और मैं जो बोलता हूं बस वही करता हूं। पार्थ बेहद गहरी और डरावनी आवाज में रूही से ये सब बोल रहा था। वहीं उसकी ये बात सुनकर रश्मि ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इंसानियत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी बच्ची मेरे बिना कैसे रहेगी? तुम एक माँ से उसकी बेटी छीनकर दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेंगे। अभी भी मौका है, इसे मेरे पास रहने दो। तुम्हें क्या ही मिलेगा इसे किडनैप करके? तुम मुझसे जो करवाना चाहते थे मैंने कर दिया है, उसके बाद भी इसे क्यों अपने पास रखना चाहते हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी के लिए, मेरी बेटी को मेरे साथ रहने दो। रश्मि के गिड़गिड़ाने से पार्थ पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें अभी भी सिर्फ रूही पर टिकी थी। वो उसके एक्शन देखना चाहता था, क्या वो अपनी बात पर खरा उतरती है या नहीं। रश्मि की आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रूही को और भी कसकर सीने से लगा लिया, जैसे कि अगर उसने एक पल के लिए भी ढीला किया तो बेटी हमेशा के लिए खो जाएगी। प्लीज, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ। रश्मि अब सचमुच घुटनों पर बैठ गई, उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने आगे कहा, तुम जो चाहते हो, जो भी चाहते हो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरी रूही, मेरी बच्ची, उसे मत छीनो मुझसे। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, प्रॉपर्टी, मेरी जिंदगी, सब कुछ ले लो, बस उसे मेरे पास रहने दो। पार्थ का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वो एक कदम आगे बढ़ा, उसकी छाया दोनों माँ बेटी पर पड़ गई। रूही अब भी रश्मि की गर्दन में मुंह छुपाई हुए थी, लेकिन उसके छोटे छोटे कंधे कांप रहे थे। पार्थ ने शांत और सख्त आवाज में कहा, तुम समझ नहीं रही हो मिस डॉक्टर, ये कोई भावनाओं का खेल नहीं है, ये एक सौदा है, और सौदा पूरा होने तक रूही मेरे पास रहेगी। रश्मि ने उसकी बात सुनते ही अपनी बाहें और कसकर कस ली। उसकी सांसें तेज हो गई थी, आंसू और गुस्से से उसकी आवाज दहाड़ बन गई। सौदा? किस मुर्दा का सौदा? मैंने तुम्हारा काम कर दिया। मैंने उस आदमी को गलत दवाइयां दे दी, जिसकी मुझे जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी थी, जिसके लिए मुझे एक माँ का फर्ज अदा करना था। मेरा पेशा, मेरा खुद का मान सम्मान, सब कुछ तुम्हारे इस सौदा की भेंट चढ़ गया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? पार्थ का चेहरा बिल्कुल भी नहीं बदला। वो एक और कदम आगे बढ़ा। अब वो उन दोनों के बिल्कुल करीब था। उसकी नजरें सीधी रूही पर चाटी की। तुमने एक काम किया, मेरे कई काम बाकी हैं। रूही मेरे साथ तब तक रहेगी जब तक मेरे सारे काम पूरे नहीं हो जाते। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। बटरफ्लाई, आखिरी बार कह रहा हूँ, इधर आओ। उसकी आवाज में एक खतरनाक शांति थी जो गुस्से से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। रश्मि ने रूही को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन रूही ने खुद ही हल्के से अपनी माँ की बाहों से खुद को अलग किया। उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भीगा हुआ था, नाक लाल हो चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें अब डर के साथ साथ एक अजीब सी समझदारी से भरी थी। रूही ने हल्की सी कांपती आवाज में कहा, मुझे जाना पड़ेगा मम्मा। इतना बोलकर रूही जैसे ही उससे अलग होने लगी, रश्मि चीख पड़ी, नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मी, प्लीज। रूही ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया। वो बुरा आदमी नहीं है, उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो बोलता है वो करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे लिए, फिर से मिलने तक के लिए।
ये कहते हुए रूही ने अपनी माँ को जल्दी से गले लगा लिया। फिर वो मुड़ी और धीरे धीरे पार्थ की तरफ बढ़ने लगी, जिसके होठों पर अब एक बेहद मुश्किल से देखे जा सकने वाली संतुष्टि की रेखा उभर आई थी। रश्मि बेबसी से अपनी बेटी को जाते देख रही थी। उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया था। वो चिल्लाना चाहती थी, रूही को वापस खींच लेना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। पार्थ की उस धमकी ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक को ठंडा कर दिया था। रूही कार के पास पहुंची और पीछे के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। पार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, सामने आओ और आगे बैठो। रूही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर सामने वाले सीट के दरवाजे की तरफ बढ़ी। पार्थ ने रश्मि की तरफ एक आखिरी भारी भरकम नजर डाली। उस नजर में एक चेतावनी थी, एक आदेश था और कुछ ऐसा भी था जिसे रश्मि अभी नहीं समझ पा रही थी। याद रखो डॉक्टर, चुप्पी, वफादारी, तब तक जब तक मैं ना कहूं। इतना कहकर वो कार में बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। रूही ने विंडो से बाहर देखा, अपनी माँ को अंतिम बार नमस्ते कहते हुए एक छोटी सी मुस्कान बनाने की कोशिश की जो उसके आंसुओं में डूब गई। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर तेज होकर उस सुनसान सड़क से दूर जाने लगी, धूल का एक बादल उड़ाती हुई। रश्मि वहीं घुटनों पर गिरी रही, उस जगह को देखते हुए जहां कार अदृश्य हो गई थी। उसकी मुठ्ठियां बंद थी, नाखून हथेली में घुस रहे थे, लेकिन दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। सिर्फ एक खालीपन था, एक गहरा डरावना खालीपन। उसके दिमाग में बस यही ख्याल चल रहे थे कि पता नहीं उसे अपनी बेटी वापस पाने के लिए अब और कितने पाप करने होंगे।
कुछ देर रोने के बाद रश्मि ने खुद को संभाला और फिर अपनी गाड़ी में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। यहां रूही से मिलने अकेले आई थी। अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो गाड़ी ड्राइव करके वापस क्लिनिक पहुंच पाए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर ली और बेहद धीमी रफ्तार से उसकी गाड़ी क्लिनिक की तरफ बढ़ गई।